ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विजिट वीजा मामले की वजह से लंबे समय से अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक हुई संचालित। विजिट वीजा मामले में अपनी संलिप्तता न होने की बात गृहमंत्री लेखक ने रखी सदन में। राष्ट्रीय सभा से संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 हुआ पारित। रडिलधुरा की अधिकतर स्वास्थ्य संस्थाओं में है दवाओं का अभाव और इसराइल से ईरान पर हमले का बदला लेने की तेहरान ने दी है चेतावनी। दोनों पक्षों से संयम अपनाने का संयुक्त राष्ट्र ने किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। विजिट वीजा मामले के कारण लंबे समय से अवरुद्ध होती आ रही प्रतिनिधि सभा की बैठक आज संचालित हुई। प्रतिपक्षी दलों के दो खेमों में विभाजित होने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों के विरोध के बीच आज की बैठक संचालित हुई। सत्तारूढ़ दल और प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केंद्र के बीच आज हुई दो सूत्रीय सहमति को लेकर रासपा और राप्रपा के सहमत न होने के बाद विरोध के बीच आज संसद की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के बीच माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने कहा कि विजिट वीजा अपचलन के कारण जनता को भुगतनी पड़ रही समस्या के समाधान का मुद्दा माओवादी केंद्र उठाती आ रही है, साथ ही दलों के बीच सहमति के आधार पर पार्टी आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। इनके बाद बोलते हुए राप्रपा के राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र की मिली भगत के बिना विजिट वीजा अपचलन जैसे भ्रष्टाचार होने की संभावना ही नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने दिनों तक इन्होंने आंदोलन का नाटक किया और अब वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। रासपा और राप्रपा सांसदों की नारेबाजी और बेल घेराव से बचते हुए रोस्ट्रम पर पहुंचे गृहमंत्री रमेश लेखक ने सदन को बताया कि विजिट वीजा मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और अख्तियार द्वारा की जा रही जांच में वे पूरी तरह सहयोग देंगे। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ एक यानी परसों रविवार को सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा के अवरोध को समाप्त करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के बीच दो सूत्रीय सहमति हुई थी। नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक महेश कुमार बरतौला और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे के बीच सहमति होने के बाद अवरुद्ध संसद संचालन का रास्ता साफ हुआ था। सहमति में विजिट वीजा और अध्यागमन के मामले में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा की जा रही जांच में सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग दिए जाने की बात का उल्लेख है। साथ ही अध्यागमन और विजिट वीजा मामले में पहले से मौजूद समस्या समाधान के लिए सरकार की ओर से आवश्यक अध्ययन और छानबीन कर नीतिगत कानूनी और संरचनागत सुधार के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने की दिशा में ठोस पहल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के बाद भी सहमति में शामिल है। राष्ट्रीय सभा ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 को पारित किया है। आज की बैठक ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विमर्श के बाद सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 5 गते बृहस्पतिवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। काठमांडू विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में आज विभिन्न तहों और विधाओं में 1129 विद्यार्थियों को दीक्षित होने की उपाधि प्रदान की गई। प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालय के कुलपति केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में संपन्न दीक्षांत समारोह में अमेरिका स्थित माउंट साइनाई हेल्थ सिस्टम्स के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रेंडन जी कार का प्रमुख आतिथ्य और शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री एवं सह कुलपति रघुजी पंत की उपस्थिति थी। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि राज्य को मातृभाषा संरक्षण के लिए आवश्यक नीति बनानी होगी। नेपाल पत्रकार राष्ट्रीय दबू द्वारा आज ललितपुर में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन के उद्घाटन में सभामुख घिमिरे ने यह बात कही। ये बताते हुए कि देश की 62 भाषाओं के संरक्षण में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, रासा और गोरखा पत्र बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा संरक्षण के लिए आवश्यक नीति बनाना बहुत जरूरी है। डडेलधुरा के सभी 7 स्थानीय तहों में मौजूद 72 स्वास्थ्य संस्थाओं में से अधिकांश में दवाओं का अभाव होने की शिकायत मरीजों और परिजनों ने की है। उनकी शिकायत है कि सरकार द्वारा घोषित निशुल्क आधारभूत दवाओं का स्वास्थ्य केंद्रों में अभाव होने के कारण वे इलाज से वंचित हो रहे हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख केशर बहादुर साउद ने बताया कि बजट अभाव के कारण मांग के मुताबिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा ने कहा कि नेपाल में वैदेशिक विकास सहयोग में कमी आ सकती है। आज प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की बैठक में परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने यह बात कही। ये बताते हुए कि जियोपॉलिटिक्स लगायत कारणों से नेपाल को मिलने वाली विकास सहायता में कमी आ सकने के संकेत पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रही है। परसा की वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 ड्राईपोर्ट सड़क खंड स्थित सीताराम चौक पर आज हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राईपोर्ट सड़क खंड पर भूस लोडेड बिगड़ने के कारण रुके हुए भारतीय ट्रक को पीछे से मोटरसाइकिल के टक्कर देने से यह हादसा हुआ। हादसे में परसा की छिपहर माई गांवपालिका वार्ड नंबर 3 झलमैया के 23 वर्षीय रामकांत यादव और दूसरे 23 वर्षीय विजय यादव की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के हमले के बाद ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने बदला लेने की चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इसराइल को सजा दिए बिना न छोड़ने की बात कही है। इसराइल के हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान की ओर से करीब 200 ड्रोन भेजे गए हैं। ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की भी तैयारी कर ली है। इसराइल ने आज तड़के ईरान की परमाणु और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। इन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों की जान भी इसराइल के हमले में गई है। इससे ईरान की सेना भड़की हुई है और जवाबी हमले की तैयारी में है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेकरची ने इसराइल के हमले को बर्बर और सुनियोजित बताते हुए इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की मदद से ही इसराइल ने यह सब किया है। शेकरची ने ईरानी आर्मी चीफ और IRGC हेड की मौत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसराइल की आक्रामकता के नतीजे में हमारे कई कमांडरों और नागरिकों की मौत हुई है। अब उसे एक कठिन प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। खबरों के मुताबिक इसराइल ने आज सुबह 200 फाइटर जेट्स से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78 लोग मारे गए और 329 घायल हो गए। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम अपनाने का आग्रह किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विजिट वीजा मामले की वजह से लंबे समय से अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक हुई संचालित। विजिट वीजा मामले में अपनी संलिप्तता न होने की बात गृहमंत्री लेखक ने रखी सदन में। राष्ट्रीय सभा से संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 हुआ पारित। डडेलधुरा की अधिकतर स्वास्थ्य संस्थाओं में है दवाओं का अभाव और इसराइल से ईरान पर हवाई हमले का बदला लेने की तेहरान ने दी है चेतावनी। दोनों पक्षों से संयम अपनाने का संयुक्त राष्ट्र ने किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार। शुभरात्रि।